Blessed Devya. Om Namah Siddhevya. Om Namah Siddhevya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Kammatha Janiyaveyana. Uvahi Samuttinnaye Jinenamiyum. Veyana Mahahiyaram. विविहियारं परुएमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये बारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें भी वेदना भाव विधान अनुयोग द्वारा अपना चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 27 पर आ गए हैं। 27 कल पूछा गया था सूत्र में, 31 नंबर के सूत्र में, के स्वामित्व से जघन्य पद में आयु की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, उसका उत्तर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे पढ़ा था हमने, सूत्र भी पढ़ा था, उसका अर्थ भी दोबारा पढ़ते हिंदी में। जो अन्यतर मनुष्य अथवा पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि वाला जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामों से, इसका अर्थ करेंगे आगे, परिवर्तमान किसको कहना, मध्यम किसको कहना, अपर्याप्त तिर्यंच संबंधी आयु का बंध करता है उसके, और जिसके इसका सत्व होता है उसके आयु की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होती है। अपर्याप्त तिर्यंच संबंधी आयु को देव और नारकी जीव नहीं बांधते, यह जतलाने के लिए मनुष्य अथवा पंचेंद्रिय तिर्यंच होने वाले ऐसा कहा है। देव और नारकियों में बंधे योग्य प्रकृति है, उसमें वो सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण इन प्रकृतियों को बांधते ही नहीं है। अब शंका, ये इतना तो हमने कल पढ़ा था, ये शंका से अभी शुरू होता है अपना। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय जीव भी अपर्याप्त तिर्यंच की आयु को बांधते हैं, तिर्यंच करना तिर्यच हुआ है, इसलिए उनमें जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता है, उसका समाधान। ये भी प्रश्न का अर्थ हमने देखा था कल, ये जो तिर्यंच अपर्याप्त की आयु बांधने वाले कौन कौन होते हैं, तो मनुष्य तिर्यंच होते हैं, तो मनुष्य तिर्यंचों में भी कौन कौन होते हैं, सभी यानी पर्याप्त अपर्याप्त सभी हो गए, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच अपर्याप्त की आयु बांध सकते हैं, तो उनको यहाँ क्यों नहीं लिया, उसका समाधान नहीं, क्योंकि उनमें आयु, उनमें यानी उन जीवों में आयु के जघन्य अनुभाग के बंध के कारणभूत परिणामों का अभाव है। ये भाव की अपेक्षा जघन्य की बात चल रही है, काल की अपेक्षा जघन्य तो वो बांधते हैं, परंतु अनुभाग यानी भाव की अपेक्षा से वो जघन्य बंध के कारणभूत परिणाम उनमें नहीं पाए जाते। शंका, उनमें वे परिणाम नहीं है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, इसी सूत्र से जाना जाता है, क्योंकि सूत्र में बताया ना कि जघन्य वे भाव से जघन्य किसके होती है। प्रति समय बढ़ने वाले या हीन वाले, हीन होने वाले जो संक्लेश या विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं, वे अपरिवर्तमान परिणाम कहे जाते हैं। ये परिवर्तमान और अपरिवर्तमान किसको कहना, उसकी बात चल रही है। फिर से दोबारा पढ़ेंगे, अपरिवर्तमान किसको कहते हैं, परिवर्तमान ने लौट कर फिर वापस उसी में आना, अपरिवर्तमान ने प्रति समय बढ़ने वाले, समय समय प्रति बढ़ते 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 चले जाए, या हीन 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 होते चले गए, तो प्रति समय बढ़ने वाले या हीन होने वाले, ये किस पे लगवाना, संकलेश में भी और विशुद्धि में भी लगाना। जो संकलेश या विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं, वे अपरिवर्तमान परिणाम कहे जाते हैं, किंतु जिन परिणामों में स्थित होकर तथा परिणामांतर को प्राप्त हो, परिणामांतर यानी अन्य परिणाम को, यानी एक परिणाम से अन्य परिणाम को प्राप्त हुआ और पुनः एक दो आदि समयों द्वारा उन्हीं परिणामों में आगमन संभव होता है, उन्हें परिवर्तमान परिणाम कहते हैं। अने लौट के उसी परिणामों में वापस आना, उसको कहते हैं परिवर्तमान आदि, यानी कुछ गिने चुने समय। हाँ, यानी एक दो आदि में खाली एक और दो नहीं समझना, यथा योग्य जो कुछ है उसको समझना। उनसे आयु का बंध होता है, यानी आयु के बंध होने वाले परिणामों की बात जो चल रही है उनमें, अब ये जो परिवर्तमान परिणाम है उनमें से उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य के भेद से परिणाम तीन प्रकार के हैं। परिवर्तमान वाले जो है उसमें तीन प्रकार, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। इनमें अति जघन्य परिणाम आयुबंध के अयोग्य है। देखो, परिवर्तमान टोटल जो है वो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट है। जघन्य परिवर्तमानों से आयु का बंध नहीं होता है, अति जघन्य कहा उसको। अत्यंत महान परिणाम भी आयुबंध के अयोग्य ही है। अत्यंत महान का अर्थ होता है विशुद्ध, अत्यंत विशुद्ध, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। ये विशुद्धि की ओर नहीं लेना, संकलेश विशुद्धि में दोनों में लेना, अत्यंत जघन्य और अत्यंत उत्कृष्ट, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। किंतु उन दोनों के मध्य में अवस्थित परिणाम, ये आयुबंध के योग्य जो इसको कहते हैं, जो परिणाम है उनको क्या कहते हैं? परिवर्तमान मध्यम परिणाम कहलाते हैं। सूत्र में ये शब्द आया था ना, देखो सूत्र में क्या लिखा था। मनुष्य और पंचेंद्रिय तीन चोनी वाला जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामों से, कौन से परिणामों से आयु बांध रहा है वो वहां बताया था। तो ये मध्यम परिवर्तमान क्या बात होती है उसकी बात बता रहे। उनमें जघन्य परिणामों से, मध्यम वाली भी रेंज होगी ना, मध्यम कोई एक भेद नहीं है, मध्यम यानी बहुत सारे उसमें, तो उसमें से जघन्य लेना। तो उनमें जघन्य परिणामों से तत्प्रायोग्य विशेष कारणों द्वारा, तत्प्रायोग्य यानी ये जो अपर्याप्त आयु बंध के कारणभूत विशिष्ट परिणामों द्वारा, उसके यथायोग्य परिणामों द्वारा, कारणों द्वारा जिसने अपर्याप्त संबंधी तिर्यंच आयु को बांधा है उसके आयु का जघन्य अनुभाग होता है, तथा जिसके उक्त अनुभाग का स्वत्व होता है, यानी जिसने ऐसी आयु बांधी है जघन्य अनुभाग वाली और उसकी सत्ता में वो है, उसके भी आयु का जघन्य अनुभाग होता है। बंध की अपेक्षा भी बताया और सत्ता की अपेक्षा भी बता दिया। तब अतिरिक्तम अजघन्य, इससे भिन्न उसकी अजघन्य वेदना होती है। यह सूत्र सुगम है। अब सामित्तेन जहन्न पदे नामवेयना भावदो जहन्निया कस्स, स्वामित्व से जघन्य पद में नाम कर्म की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। नहीं, वो प्रश्न ख्याल में आवे ऐसा है। पहले अभी अभी हमने आयु की देखी थी ना, आयु की किसको होती वो भी देखा था, और उसके पहले हमने वेदनी की, स्वामित्व से जघन्य पद में वेदनी की वेदना किसको होती वो भी देखा था। उसके पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की भी बात की थी। हाँ, मोहनी का कहाँ हुआ है? हाँ, मोहनी के 26वें में पहले देख रही थी, 26वें मोहनी की भी हो गई। अब यहाँ हम आते हैं 34वें सूत्र में, अभी हमने पढ़ा स्वामित्व से जगने, वो हो गया सूत्र में, अभी वो किसके होती है उसका उत्तर बता दें। अन्न दरेण सुहम निगोद जीव अपजत्तयेन हद समुपत्तिय कम्मेन परियत्तमान मध्यम परिणामेन बद्धल्लयम जस तम संतकम्ममथि तस्य नामवेण भावदो जहन्ना। हत समुत्पत्ति कर्म वाला, ये नए नए शब्दों से अभी परिचय होने वाला है। अभी हमने कौन सा देखा, परिवर्तमान। अब कहते हत समुत्पत्ति कर्म वाला, अन्यतर जो सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामों के द्वारा नाम कर्म का बंध करता है उसके, और जिसके इसका सत्व होता है उसके नाम कर्म की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होती है। किस किस के तो बंध की अपेक्षा भी बताया और सत्ता की अपेक्षा भी बताया। अब इसका नहीं, नहीं, अपरिवर्तमान मध्यम में यानी ये तो जघन्य की बात चल रही है, होता ही नहीं। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? वो परिवर्तनाओं में जघन्य और उत्कृष्ट बताए। देखो सातवें गुणस्थान में होता है कि नहीं बंद, तो वहां तो हो सकता है कि वो तो छठे में से आया है और अभी वृषुद्धि बढ़ रही है, उतने काल में उसको हो सकता है। मध्यम परिणाम में होता है। अब यहाँ हमारे विशिष्ट कंडीशन चल रही ना कि जघन्य भाव वाला किसके साथ बनता है उसकी बात चल रही थी। हाँ, ये अभी उसी को हम देख रहे हैं ना, नाम कर्म की जो अनुभाग मिनिमम अनुभाग बांधने वाला कौन सा जीव है उसकी बात चल रही। ये भाव की अपेक्षा ही समझना सर्व जगह। जब हम जघन्य बंद करते हैं, अभी तक तो हमारे वो तो स्थिति की बात चलती है ना, घूमती है सिर में। हाँ हाँ, यहाँ भाव की अपेक्षा की बात चल रही है। देखो क्या कहते हैं, हतस, ये अभी हमने पढ़ा ना, अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे नए शब्द आए हैं। देखो अन्यतर कहा ना, इसलिए कहते अवगाहना आदि से होने वाली विशेषता यहाँ विवक्षित नहीं है। हम देखते सूक्ष्म निगोद में भी अवगाहना के कितने भेद हैं, पता है आपको? सूक्ष्म निगोद में भी अवगाहना के कितने भेद हैं, जैसे हमने वो टेबल देखा था 1 से 64 तक, तो एक से दूसरा भेद भी असंख्यात गुणा था जो वायु का एक का जगन्य था। ऐसे कितने ही टेबल आगे चले गए थे अभी हम, फिर वो सूक्ष्म की बादर की जगन्य आई थी, उसके बाद फिर सूक्ष्म की उत्कृष्ट आई थी, ऐसे है ना। तो ये बहुत सारे भेद है उसमें, असंख्यात भेद होंगे। तो वो नहीं, जरूरत नहीं है पुस्तक की, जरूरत नहीं, उसमें असंख्यात भेद होते इतनी, ये अवगाहना के असंख्यात भेद हो सकते हैं। तो अवगाहना आदि से होने वाली विशेषता यहाँ विवक्षित नहीं है, यह बतलाने के लिए, वो दिख रहा है बतलाने के लिए अन्यतर पद कहा गया है। ये बात उन्होंने बहुत जगह ली है ना, अन्यतर का अर्थ। हाँ हाँ, वेद लिया था पहले में, यहाँ तो वेद का कोई सवाल ही नहीं, नपुसक वेद वाले ही होते सारे, इसलिए अवगाहना आदि में जो कुछ यथायोग्य समझना। अन्यतर पद कहाँ है, बाद में कौन सा शब्द आया था, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, तो बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त आदि आगे के जीव समासों का प्रतिषेध करने के लिए सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के चाहिए क हुआ जीव के द्वारा ऐसा कहा है। शंका, आगे के जीव समासों का प्रतिषेध किस लिए करते हैं? समाधान, चूंकि उनमें जघन्य अनुभाग की संभावना नहीं है, ये जघन्य अनुभाग को बांधने वाला कौन सा भी लिया, सूक्ष्म एक इंद्रिय, उसमें भी उन्होंने निगोद को लिया है, क्योंकि जघन्य में जघन्य उनको बताना है। अब अह हुआ अतः करना, मैंने पढ़ते समय तो अतः पढ़ा, फिर पढ़ती हूँ। चूंकि उनमें जगह उनमें ने बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त आगे के जीव समास, उनमें जघन्य अनुभाग की संभावना नहीं है, अतः उनका प्रतिषेध करते हैं। यथा उक्त जीव समासों में से सर्व विशुद्ध जीवों में तो जघन्य स्वामित्व बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने पर अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणे प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग में अनंत गुणी वृद्धि का प्रसंग आता है। जो विशुद्धि विशुद्ध जीव है, सर्व विशुद्ध जीवों में तो प्रशस्त कर्म बन देंगे और उसका वो अनुभाग भी ज्यादा होगा। सर्व संक्लिष्ट जीवों में भी वह नहीं बन सकता, क्योंकि अति तीव्र संक्लेश के द्वारा अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि का प्रसंग आता है। यहां तो हमें जघन्य से जघन्य अनुभाग चाहिए। परिवर्तमान मध्यम परिणाम युक्त जीवों में भी जघन्य स्वामित्व संभव नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के परिवर्तमान मध्यम परिणामों की अपेक्षा उन जीवों के परिणाम अनंत गुणे होते हैं। ये परिवर्तमान मध्यम परिणाम से युक्त जीवों में कौन से, उन्हीं अन्य जीव समासों की बात चल रही है। अन्य जीव समास जो बादर एकेंद्रीय वगैरह, उनके परिवर्तमान मध्यम परिणामों में भी ऐसा सूक्ष्म बंध, सूक्ष्म यानी जघन्य बंध नहीं होगा। उसका कारण क्या, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के परिवर्तमान मध्यम परिणामों की अपेक्षा उन जीवों के यानी अन्य जीवों के परिणाम अनंत गुणे होते हैं, इसलिए वे जघन्य नहीं हो सकते। अब ये पहला शब्द है ना, हत समुत्पत्तिक। हत समुत्पत्तिक कर्म वाले ऐसा कहने पर पूर्व के समस्त अनुभाग सत्व का घात करके और उसे अनंत गुणाहीन करके स्थित हुए जीव के द्वारा, वो हुरस्व करना, स्थित हुए क्या कहते हैं, हत समुत्पत्तिक। जैसे हमने देखा था ना पहले भी, एक इंद्रियों में जाता है तो स्थिति के कांडक होकर उसका स्थिति घात कर देता है, काल के प्रकरण में हमने देखा था, ऐसे अनुभाग सत्व का भी घात कर देता है। तो उसका घात करना है ने क्या, अनुभाग का घात किया है, कर्मों की निर्जरा नहीं की है। परमाणु तो है वहां पर, परंतु उनका अनुभाग हीन हीन होता चला गया, तो उसको कहते हैं पूर्व के समस्त अनुभाग सत्व का घात करके और उसे अनंत गुणा हीन करके स्थित हुए जीव के द्वारा, ऐसा इस हत समुत्पत्तिक कर्म वाले, इस शब्द का इतना अर्थ समझना। हाँ, हत का अर्थ होता है उसको घात करना, हत यानी घात करना, यह अभिप्राय समझना चाहिए। सूत्र में जघन्य और उत्कृष्ट परिणामों का निराकरण करने के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणामों के द्वारा ऐसा निर्देश किया गया है। जिसने उक्त अनुभाग को बांधा है और जिसके उसका सत्व है, उसके नाम कर्म की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होती है। तब वदिरित्तम अजहन्ना, इससे भिन्न उसकी अजघन्य वेदना होती है, यह सूत्र सुगम है। अब सामित्तेन जहन्न पदे गोद वेदना भावदो जहन्य कस्स, स्वामित्व से जघन्य पद में गोत्र की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। अब कहते अन्न दरेण बादर तेउ वाउ जीवेण, अब यहां तेजो का एक और वायु का एक को लिया है। सव्वा ही पज्जत्ति ही पज्जत्त यदेन सागार जागार सव विशुद्धेन हद समुपत्य कमेन उच्छा गोदम उवेल्लिदूण निजा गोदम बद्धल्लयम जस तम संतकम्मम अत्थि गोदवेन भावदो जहन्ना। ये उद्वेलना करने वाला जीव है, देखेंगे अभी पूरा पढ़ेंगे हिंदी में। देखो, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुए, साकार उपयोग से संयुक्त, जागृत, सर्व विशुद्ध एवं हतसमुत्पत्तिक कर्म वाले, यानी जिससे वो अनुभाग का जिसने कम कर दिया, अनंत गुणाहीन कर दिया, जिस अन्यतर बादर तेज का एक वायु का एक जीव के उच्च गोत्र की उद्वेलना होकर नीच गोत्र का बंध होता है, वह जिसके उसका सत्व होता है, उसका यानी निज गोत्र का, उसके गोत्र की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होती है। शंका, बादर तेज का एक वायु का एक जीवों का निर्देश किस लिए किया गया है? समाधान, उनमें बंध को प्राप्त न होने वाले एवं नीच गोत्र की अपेक्षा शुभरूप होने से विशाल अनुभाग युक्त उच्च गोत्र की उद्वेलना करके गलाने के लिए उक्त जीवों का निर्देश किया है। ये क्या बात है, समझ में आती है? क्या कहते हैं, तेजोकायिक और वायुकायिक जीव उच्च गोत्र बांध नहीं सकते। हमने देखा है सूक्ष्म निगोद में से भी मनुष्य में आ सकता है जीव, और आकर अभी सूक्ष्म में नहीं, बादर में से आकर तो उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है, और सूक्ष्म में से आकर मुनिपद तक भी पुरुषार्थ कर सकता है। यानी उच्च गोत्र में आया ना, तभी तो ये बातें हो सकती है। तो अन्य भी एकेंद्रियों में से जीव उच्च गोत्र में आ सकता है, परंतु वायुकायिक और तेजोकायिक कैसे है कि ना उनको देवगति का बंध होता है ना नारकी का होता है, वो तो अन्य भी एकेंद्रियों का नहीं होता, वो तो समझे। परंतु अन्य एकेंद्रिय मनुष्य में आ सकते हैं, पंचेंद्रिय तिरेंच में भी, पंचेंद्रिय की बात नहीं है, मनुष्य की बात है, क्योंकि उच्च गोत्र लेना है ना। परंतु तेजोकायिक और वायुकायिक नियम से उसके पश्चात वाला उनका उच्च गोत्र का बंध नहीं कर सकते, ना ही मनुष्य गति का बंध कर सकते। परंतु जो सत्ता में पूर्व में पड़ी हुई जो प्रकृतियां हैं उसकी उद्वेलना कर देते हैं। उद्वेलना करने ने उच्च गोत्र को नीच गोत्र में कन्वर्ट कर देना, इवन मनुष्य गति आयु नहीं हो, मनुष्य गति के परमाणु अंदर हो, मनुष्य गत्यानुपूर्वी के हो, उसको भी पलटा देते, उद्वेलना उसकी भी हो सकती है, उसकी भी उद्वेलना करते हैं। वो तो हमने उसकी भी देखी थी, नरक देवगति देवगत्यानुपूर्वी वगैरह वगैरह पहले बंधी है और अंदर पड़ी है, उन प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। तो यहाँ क्या कहते, देखो, एक तो वो नया उच्च गोत्र बांधते नहीं है, और जो पुराना बंधा हुआ सत्ता में पड़ा है उसकी उद्वेलना कर देते हैं, और उद्वेलना करके अभी नया बांध रहे हैं तो उनके वो जघन्य में जघन्य भाव की अपेक्षा हो सकता है। देखो इस वाक्य को फिर पढ़ती है, उनमें तेज कायिक और वायु कायिक जीवों में बंध को प्राप्त न होने वाले ऐसे कौन सा है? उच्च गोत्र एवं नीच गोत्र की अपेक्षा शुभरूप होने से विशाल अनुभाग युक्त। किसकी बात चल रही है? उच्च गोत्र की। यानी उच्च गोत्र के दो विशेषण बताए, एक तो ये उच्च गोत्र तेजोकायिक वायुकायिक में बंध को प्राप्त नहीं होता, एक बात, और उच्च गोत्र शुभ प्रकृति होने से नीच गोत्र की अपेक्षा उसमें अनुभाग ज्यादा है, और ऐसे उच्च गोत्र की उद्वेलना करके गलाने के लिए, यानी जिन जीवों ने वो सत्ता में पड़ा हुआ उसको गला दिया है, यदि सत्ता में पड़ा है तो हम उसको भाव की अपेक्षा जगन्य नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी सत्ता में वो उत्कृष्ट वाला पड़ा है। तो जिसने सत्ता में से निकाल दिया है और अब जो नया बंध वो नीच गोत्र का कर रहा है, ऐसा जीव लेना था इसलिए उनको ले लिया। अब अपर्याप्त क्यों कहा? चूंकि अपर्याप्त काल में सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि नहीं होती है, अतः पर्याप्त काल में होने वाली विशुद्धियों का ग्रहण करने के लिए सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुए इस पद का निर्देश किया है। साकार उपयोग व जागृत समय में ही उत्कृष्ट विशुद्धियां व सर्वोत्कृष्ट संकलेश होते हैं। विशुद्धि भी हो सकती है, वैसे संकलेश भी ज्यादा होते हैं। यह जतलाने के लिए साकार उपयोग युक्त व जागृत इस पद का निर्देश किया गया है। शंका, यहां सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि का क्या प्रयोजन है? समाधान, नीच गोत्र के बहुतर अनुभाग का घात करना ही उसका प्रयोजन है। यानी नीच गोत्र में अधिक वाला अनुभाग हो उसका घात हो जाता है। इसलिए उक्त लक्षणों से संयुक्त जीव के गोत्र की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होती है। तव वदिरित्तम अजहन्ना, इससे भिन्न उसकी चाहिए ना, उसको दिख रहा है, उसकी उसकी चाहिए। पहले 33 सूत्र में उसकी लिखा, 36 में भी, यह भी 36 लिखा, पहले भी 36 लिखा, या 39 चाहिए। चलो मैं अर्थ देखने गई शब्द, ये पकड़ में आया। सूत्र नंबर 39 करना उसको, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार अपने भीतर स्थान संख्या व जीव समुदाहार अनुयोग द्वारों को रखने वाला अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अब अल्प बहुत्व की बात करेंगे। अप्पा बहुवेत्ति तथ इमानि तिन्नी अनुयोग दाराणि जहन्न पदे उक्कस पदे जहन उक्कस पदे। यानी जघन्य जघन्य में अल्प बहुत्व कहेंगे, उत्कृष्ट उत्कृष्टों में कहेंगे, और फिर जघन्य और उत्कृष्टों में मिलाकर कहेंगे। अल्प बहुत्व का प्रकरण है, इसमें ये तीन अनुयोग द्वार है, जघन्य पद विषयक अल्प बहुत्व, उत्कृष्ट पद विषयक अल्प बहुत्व और जघन्य उत्कृष्ट पद विषयक अल्प बहुत्व। यहाँ तीन ही अनुयोग द्वार होते हैं, क्योंकि एक और दो संयोगी भंगों को छोड़कर यहाँ त्रिसंयोगी आदि भंगों का अभाव है। इसका अर्थ क्या है? हाँ, जघन्य और उत्कृष्ट ये दो ही पॉसिबिलिटी है। अब दो पॉसिबिलिटी है, वहां कितने भंग हो गए उसके? दोनों को एक अकेला अकेला रखो, एक जघन्य को एक बार लो, उत्कृष्ट एक बार को लो, और तीसरी बार दोनों को एक साथ ले लो, तो तीन ही भंग होते। ये हमने बहुत बार देखा था ना, जहां तीन चीजें होती है वहां भंग कितने होते हैं? हाँ, अरे जिन धर्म में कितने भंग, सप्त भंगी इतनी फेमस है ना, हमने देखा था ना, तीन चीजें है, कहीं भी तीन चीजें, उसमें कितने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकते हैं। अकेले तीन को ले लो, या दो दो को ले लो, या तीनों को एक साथ ले लो। हाँ, तो क्या करना, दो गुना दो गुना दो आठ हुए, उसमें से एक घटा देना तो सात भंग हो गए। कोई चीज चार चीजें होगी और उसमें कॉम्बिनेशंस करने हैं, परम्यूटेशन भंग की निकालने हैं। हाँ, तो ये 16 हो जाएगी ना, दो गुना दो गुना दो गुना दो, उसमें से एक घटा देना तो 15 भंग हो गए। हमेशा हम सप्त भंगी कहते ना, अस्थि नास्ति और तीसरा कौन सा है? अस्थि नास्ति नहीं, तीन अलग अलग चाहिए, अवक्तव्य। अस्थि नास्ति तो द्विसंयोगी भंग हुआ, अवक्तव्य लिए ना, और फिर उसके भंग बना दो। चलो देखो, पांच को निकालना है, निकालो, पांच बार आपस में गुणा करो, 32 होगा, उसमें से एक घटा दो, 31 हो जाएगा। अब आगे अब 41 नंबर, जघन्य पद में, जघन्य पद में अभी अल्प बहुत्व बता रहे हैं। जहन्न वेदेन, वेदेन उसका पदे ना, आगे क्या है? जघन्य इस पद से ऐसी, ये पदे ना चाहिए है ना, आगे भी उत्कृष्ट में देखेंगे। पदे न कहाँ मिला? उक्कुस पदे न, हाँ उक्कुस पदे न, ये पदे नहीं चाहिए। जहन्न वेदे न हुए ना, वो जहन्न पदे न करना प्राकृत में। हाँ वे के बदले प, आजू बाजू में देखते ना तो कहीं मिल जाते वो शब्द। जहन्न पदेन सवत्थोवा मोहनीय वेयना भावदो जहन्या। जघन्य इस पद से भाव की अपेक्षा मोहनीय की जघन्य वेदना सबसे स्तोक है। सबसे कम मोहनीय की चल रही है, चौदहवें मोहनीय है क्या? हाँ यानी आपको ऐसा पूछना है चौदहवें में अन्य कर्मों की जितनी उससे भी ये कम है क्या, ऐसा पूछना है। हाँ तो यह अनुभाग की अपेक्षा चल रही है बात, तो अनुभाग कहाँ मिनिमम होगा? सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत समय में। हाँ देखो क्या कहते हैं, उसका कारण भी बताएंगे, क्योंकि अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण क्षपक गुण स्थानों में, क्षपक की बात है, संख्यात हजार बार कांडक घात के द्वारा। कौन से कांडक घात? अनुभाग कांडक घात, क्योंकि यहाँ अनुभाग की बात चल रही है। हमने देखा था एक स्थिति कांडक का जो काल है उस अंतर मुहूर्त में अनुभाग कांडक घात हजारों बार होते हैं, और ऐसे स्थिति कांडक घात भी हजारों बार होते रहते, अलग अलग प्रोसेसेस चलती रहती है उसकी। तो ये कांडक घात कहाँ पर होते हैं, कौन से गुणस्थान से होते हैं, अभी पढ़ा ना हमने। आठ और नौवा जो पहले सातिशय वाला ना अधप प्रवृत्त करण, उस करण परिणाम में स्थिति कांड घात और अनुभाग कांड घात नहीं होते। कहीं की भी बात लो, सम्यक तो पूर्व की भी बात करो, परंतु ये अपूर्वकरण से ही अनुभाग कांड घात और स्थिति कांड घात होंगे। तो यहाँ कहाँ से शुरू हुए? अपूर्वकरण से, और अनिवृत्तिकरण के भी काल में पूरे चलते रहे, तो बार 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 ऐसे हजारों बार अनुभाग कांड घात हुआ। एक कांड घात होता है तो अनुभाग जो है वो पूर्व अनुभाग से अनंतवा भाग हो जाता है। स्थिति कांडघात में तो काल तो कुछ विशिष्ट समयों से घटेगा ना, वो तो असंख्यातवा भाग समझ में हो गए, परंतु यहाँ तो अनंतवा भाग होता है। यहाँ मोहनी की बात चल रही है, मोहनी वाले अनुभाग कांडघात की बात चल रही। तो क्या कहते हैं, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण क्षपक गुण स्थानों में संख्यात हजार बार कांडक घात के द्वारा अनुभाग को अनंत गुणा हीन करके। एक तो कांडक घात के द्वारा अनुभाग अत्यंत हीन हुआ, पश्चात स्पर्धक गत अनुभाग की अपेक्षा। अभी संसार अवस्था में तो वो स्पर्धकों की रचना होती है ना, जघन्य स्पर्धक है उसमें अनुभाग सबसे कम है, उससे ऊपर का दूसरा स्पर्धक है उसमें अनुभाग और ज्यादा है, हर एक की पहली पहली वर्गणा में दुगुना 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 होता चला जाता है। तो स्पर्धगत अनुभाग की अपेक्षा, तो जब जीव नवे गुण स्थान में आता है तो क्या होता है स्पर्धकों के बाद, क्या होता है उसमें से? हाँ बादर, एक्चुअली उसके पहले पूर्व अपूर्व स्पर्धक भी करता है, पर यहाँ तो जनरल बात करनी है ना। स्पर्धकों में से अपूर्व स्पर्धक हो गए, अपूर्व स्पर्धकों में से बादर कृष्टि होगी, बादर कृष्टि में से सूक्ष्म कृष्टि होगी। वर्गणा वर्गणा के प्रति अविभाग प्रतिच्छेद एक से बढ़ता है, और कृष्टि कृष्टि प्रति वो अनंत गुणा का डिफरेंस है, इसलिए उसको कृष्टि कहते हैं। अनुभाग को अत्यंत हीन करना ही कृष्टि करना है, कृष कर देते उसको। क्या कहते देखो, स्पर्धगत अनुभाग की अपेक्षा उसे अनंत गुणा बादर कृष्टि रूप से करके अनंत गुणा हीन चाहिए का ऊपर क्या है, अनंत गुणहीन बादर किट्टी रूवेण कादुना, अनंत गुणहीन है ना ऊपर देखो, खंडे घादे न अनंत गुणहीन कादुन पुनो फद्दयाणु भागादो अनंत गुणहीन बादर किट्टी सरुवेण कादुना। अनंत गुणा के आगे हीन करना, नहीं तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। मिला कहाँ करना है, तीसरी लाइन में अनंत गुणा के बाद हीन शब्द डालना। अनंत गुणा हीन का अर्थ होता है अनंत वा भाग कर देना, उसे अनंत गुणा हीन बादर कृष्टि रूप से करके तत्पश्चात बादर कृष्टिगत उक्त मोहनीय के अनुभाग को जघन्य बादर कृष्टि की अपेक्षा अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्टि रूप से करके। पहले तो बादर कृष्टि की, बादर कृष्टियों में भी बहुत सारी कृष्टि किया ना, देखो अभी जरा इसको टेबल करके देखना पड़ेगा। ये सारे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ये सारा झमेला होता है। पहले के जितने स्पर्धक थे अनुभाग वर्गणा वगैरह जो कुछ थी उसमें से अनुभाग अत्यंत घटकर पहले अपूर्व स्पर्धक तैयार होते इसके नीचे नीचे, अभी उसको इन्होंने गौण कर दिया है। अब उसमें से क्या होगा, कृष्टि होगी, कृष्टि होगी यानी जैसे हम वर्गणा दिखाते वैसे कृष्टि को दिखाएंगे। इसका अनुभाग अत्यंत हीन है तो एक कृष्टि भी बहुत सारी कृष्टि बन गई। इसमें फिर नीचे की कृष्टि वो सबसे हीन अनुभाग वाली है और ऊपर की कृष्टि वो ज्यादा अनुभाग वाली है। तो ये कृष्टियों में भी जघन्य कृष्टि लेना, ये यहाँ जघन्य शब्द डाले ना, जघन्य बादर कृष्टि की अपेक्षा सबसे नीचे वाली सबसे हीन अनुभाग वाली जो जघन्य कृष्टि थी उससे भी नीचे अनुभाग और अत्यंत हीन होता है तो उसको कहते हैं सूक्ष्म कृष्टि कर देना। तो जघन्य बादर कृष्टि की अपेक्षा अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्टि रूप से करके। पुनः सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में अंतर मुहूर्त काल तक प्रति समय अनंत गुणहीन क्रम से अपवर्तित करके, क्या कहा, अब सूक्ष्म सांप्राय में आया। अभी अनुभाग कांडक नहीं हो रहा, अनुभाग कांडक के लिए होने में एक एक अंतर्मूर्त लगता है, क्योंकि मान लेते हैं इतना विशिष्ट अनुभाग है। अभी हम अनुभाग यहाँ गिनेंगे तो इतना अनुभाग जो है विशिष्ट परमाणुओं का अनुभाग कम करना है, उसमें से पहला एक लॉट कम होगा, दूसरा लॉट कम होगा, तीसरा कम होगा अनुभाग की अपेक्षा, तो इसके लिए एक अंतर्मूर्त काल लगता है। परंतु अभी क्या पोजीशन है दसवें गुणस्थान में, प्रति समय एक एक समय में अनुभाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग होता है। कल हमने उसका नाम देखा था अनुसप समयापवर्तन, आगे घात शब्द लगा दो। अनुभाग का घटना प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा हीन होता है, उसका इतना घटता चला जाता है। तो प्रति समय अनंत गुणहीन क्रम से अपवर्तित करके सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में उदय प्राप्त स्थिति के, इस यहां बंद को लेना कि नहीं लेना, हाँ बेट मोहनीय का बंधन नवे के अंत समय तक ही है, तो दसवें में बंद है ही नहीं है, और जो कुछ है सत्ता में वो प्रति समय अनंत गुणा हीन होता जा रहा है। तो क्या होगा, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में, वो अंतिम समय में अभी उसका लास्ट समय है, अभी उदय रूप होकर वो नष्ट होने वाला है, तो वहां जो उदय है वो कितना मंद होगा। तो जघन्य में जघन्य अनुभाग वहां पर पाया जाता है, नहीं के बराबर है ना वो, फिर भी हम कहते हैं सूक्ष्म लोभ का उदय कहां तक है, दसवें गुणस्थान के अंत में। परंतु दसवें गुणस्थान के प्रति समय जो उदय इतना मंद 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 होता गया था, तो अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ ही है, परंतु वो सब जघन्य सर्व जघन्य उसका अनुभव होगा। ये बात ख्याल में आई? हाँ, चलो आगे। शंका, प्रति समय अपवर्तना किस प्रकार की होती है? प्रति समय अपवर्तन है ने प्रति समय उसका घटना, प्रति समय उसका अनंत भाग होना, प्रति समय उसका घात हो रहा है ना, अनंत गुना हो रहा है उसको। समाधान, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय संबंधी अनुभाग की अपेक्षा। अंतिम समय तक वहां तो कोई जो कुछ यथा योग्य वो अनुभाग घटता चला गया, नौवे गुणस्थान के अंत में जितना अनुभाग था उसकी अपेक्षा सूक्ष्म सांप्रायिक का प्रथम समय संबंधी अनुभाग अनंत गुणाहीन होता है। एक समय में भी अनंत वहां भाग हो गया, उसके द्वितीय समय में वही अनुभाग कांडक घात के बिना अनंत गुणाहीन होता है। एक समय में वो हीन हो गया ना, तो उसको कांडक घात नहीं हुआ। पुनः घात करना उसको धात हुआ है, घात करने के बाद शेष रहा वही अनुभाग तीसरे समय में अनंत गुणाहीन होता है। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय तक जानना चाहिए, इसी का नाम अनुसमयापवर्तन घात है, अनुसमयापवर्तनाघात। कल पढ़ा नहीं था मैंने, मगर मुझे याद आया था अनुसमयापवर्तन। अनुसमय ने प्रति समय उसका घात होता है, ये अनुसमय अपवर्तन। शंका, इसे अनुभाग कांडक घात क्यों नहीं कहते? कांडक किसको कहते हैं? एक बड़ा लॉट, उसका एक पर्व जिसको कहते हैं, परंतु उसका एक समय में तो घात नहीं होता है, उसमें से थोड़े परमाणु का हुआ, फिर दूसरे, फिर तीसरे, उसको अंतर्मूर्त लगता है। समाधान, नहीं, क्योंकि यानी उसको अनुभाग कांडघात नहीं कहते, क्योंकि प्रारंभ किए गए प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल के द्वारा जो घात निष्पन्न होता है वह अनुभाग कांडघात है। ये तो अर्थ सरल है ना इसका, मिला? परंतु उत्कीर्ण काल के बिना, ये उत्कीर्ण काल किसको कहते मालूम? कांडक का घात होने के लिए जितना समय लगता है उसको कहते उत्कीर्ण काल। जैसे हमने स्थिति कांडक घात में भी देखा था, वैसे अनुभाग कांडक घात होने तो उसको कहेंगे, पूरा नाम क्या है? अनुभाग कांडकोत्कीर्ण काल। क्योंकि हर एक का उसका काल और इसका काल अलग है, तो कहते उत्कीर्ण काल के बिना एक समय द्वारा ही जो घात होता है, यह डेफिनेशन लिखिए, उत्कीर्ण काल के बिना एक समय द्वारा ही जो घात होता है वह अनुसमयापवर्तना है। दूसरे अनुसमयापवर्तना में नियम से अनंत अनुभाग नष्ट होता है, परंतु अनुभाग कांडक घात में यह नियम नहीं है। अनंत बहुभाग नष्ट होता है, परंतु कांडक घात में यह नियम नहीं है। जहां विशुद्धि बहुत होगी तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता है वहां पर, क्योंकि छह प्रकार के हानि द्वारा कांडक घात की उपलब्धि होती है। यानी कांडक घात में छह प्रकार पाए जाते हैं, अनंत भाग भी घटेगा उसको भी कांडक घात कहेंगे, कहीं कहीं असंख्यात भाग भी घटेगा, हाँ, छह में से कोई भी हो सकता है कांडक घात में। परंतु ये प्रति समय जो होता है अनुसमयापवर्तन, उसमें तो अनंत बहुभाग, अभी जितना है इतने से यहाँ इतना अनुभाग है, तो उसमें से अनंत वा छोड़ देना और बाकी सब है वो एक समय में वो नष्ट होकर वो नीचे के समान हो जाता है। ये विशुद्धि की कमाल है, जीव उसमें कुछ नहीं कर रहा है। देखो ये कर्मों में अपने आप बातें होती है। हाँ हाँ हाँ, एटले बधु थी जाए। हाँ, जो अपने में रहता है ना वो उसका वो तो दूसरा भी सरल हो जाता है, ऐसा है। हम दूसरे को सीधा करना चाहते ना तो नहीं होता है। फिर देखो विशेषार्थ, इसी का फिर विशेषार्थ बताते। यहाँ अनुभाग कांडक घात और अनुसमयापवर्तना, इन दोनों में क्या अंतर है, इस पर प्रकाश डाला गया है। कांडक पोर को कहते हैं, पोर यानी वो पर्व, मराठी में उसको पोर कहते हैं। हाँ, पोर यानी पर्व, नहीं नहीं वो नहीं, पोर नहीं, पोर यानी पर्व, जैसे वो एक होता है ना गन्ना, उसमें एक एक जो टुकड़ा होता है उसका पर्व कहते हैं, उसका एक पर्व दूसरा कांडक, अलग अलग। ये जो उंगली है, ये उंगली में ये दो लाइन है ना, तो ये तीन भाग हो गए, तो इसको हम कहते हैं एक पैर है, इसको पोर भी कहो, पैर कहो, पोर कहो या पर्व कहो। पर्व ने टुकड़ा, हाँ नहीं, कांडक पोर को कहते लिखा है ना, पोर ने पर्व, कुल अनुभाग के हिस्से करके एक एक हिस्से का फाली क्रम से अंतर्मूर्त काल द्वारा अभाव करना अनुभाग कांडक घात कहलाता है। यानी अभी जितना अनुभाग घटाना है ना, तो उसमें एक समय में इतने परमाणु का अनुभाग घटेगा, दूसरे में उसके फाली, उसको फाली कहते, एक फाली का अनुभाग घटा, फिर दूसरे फाली का अनुभाग घटा, फिर तीसरे फाली का अनुभाग घटा, इस तरह से। और प्रति समय कुल अनुभाग के अनंत अनुभाग का अभाव करना अनुसमयापवर्तना कहलाती है। मुख्य रूप से यही इन दोनों में अंतर है। अब आगे का सूत्र, अंतराय वेणा भावदो जहनिया अनंत गुणा। ये पहले नंबर पर मुनि को लिया था ना, अब अंतराय की जघन्य वेदना अनंत गुणी है दूसरे नंबर पर। शीन कषाय के काल के भीतर यद्यपि अंतराय कर्म का अनुभाग अनुसमयापवर्तना के द्वारा घात को घ करना, उसका घात को प्राप्त हुआ है, तो भी यह मोहनीय के जघन्य अनुभाग से अनंत गुणा है। आपका भी प्रश्न था ना अन्य कर्मों के बारे में, जैसे मोहनीय का जघन्य कहाँ है, दसवें के अंत में, वैसे अंतराय का जघन्य कहाँ है, हाँ बारहवें के अंत में, तो भी जघन्य उसका मोहनीय के अनुभाग की अपेक्षा अंतराय का अनुभाग अनंत गुणा है। हाँ वहां उसने कृष्टि की थी, फिर सूक्ष्म कृष्टि की थी, तो इसका अनुसमयापवर्तन तो हो गया, परंतु मोहनीय जितना घटा नहीं है वो, इसलिए उसके अनुभाग से इसका अनुभाग अनंत गुणा है, ऐसा कहेंगे। अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे ना उसको, तो मोहनीय के जितने थे सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में, उससे अंतराय के बारहवें के अंत समय में अनंत गुणा हो गया है। देखो क्या कहते हैं, मोहनी के जघन्य अनुभाग से अनंत गुणा, क्योंकि वह मोहनी की सूक्ष्म और बादर कृष्टियों की अपेक्षा अनंत गुणे स्पर्धक रूप है, यानी उसमें स्पर्धक अनंत गुणे पाए जाते हैं। हाँ कृष्टि तो केवल मोहनी में ही होती है, शंका, अनुभाग कांडक घात और अनुसमयापवर्तना घात के द्वारा, ये सब जगह घ का ध हो गया है, जहां जहां आता है वहां वहां कर लेना, दोनों कर्मों में समानता के होने पर घात करने के बाद शेष रहे अनुभागों में विसदृशता क्यों पाई जाती है। प्रश्न ऐसा है, अनुभाग कांडक घात तो मोहनीय में भी होता था, अंतराय में भी होता था, अनुसमयापवर्तन भी दोनों में हो रहा है, तो कहते हैं ऐसी विसदृशता क्यों, वो अनंत गुणा क्यों है, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में सर्वत्र संज्वलन लोभ के अनुभाग की अपेक्षा वीर्यांतराय का अनुभाग अनंत गुणा उपलब्ध होता है। यानी हमेशा ही वो पहले से क्या रहा था, संज्वलन लोभ के अनुभाग से वीर्यांत राय का जो अनुभाग है वो अनंत गुणा था पहले से ही संसार अवस्था में भी। स्तोक अनुभाग वाली प्रकृति का घात करने के बाद शेष रहा अनुभाग स्तोक होता है, और महान अनुभाग वाली प्रकृति का घात करने के बाद शेष रहा अनुभाग बहुत ही होता है, इस कारण दोनों में विसदृशता बन जाती है। अब आगे का सूत्र, नानावर्णीय दंसनावर्णीय वेयणा भावदो जहन्नियाओ वि दोवि तुल्लाओ अनंत गुणाओ। उससे भाव की अपेक्षा ज्ञानावर्णीय व दर्शनावर्णीय की जघन्य वेदनाएं भी दोनों ही परस्पर तुल्य होकर अनंत गुणी हैं। अब अंतराय और ज्ञानावरण दर्शनावरण दो एक साथ ही चले जाते हैं, बारहवें के अंत समय तक है ना उसका उदय, फिर भी अंतराय से वो ज्ञानावरण दर्शनावरण की अनंत गुणा है। शंका, घात करने के बाद शेष रहे इन दोनों प्रकृतियों के अनुभाग में समानता किस कारण से है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण में समानता क्यों कह रहे हो? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था में ये दोनों प्रकृतियां समान अनुभाग वाली हैं। अशुभ स्वरूप से समान है एवं समान अनुभाग घात से संयुक्त है, उनका अनुभाग घात भी समान होता है, अतः उक्त दोनों प्रकृतियों के घात करने के बाद शेष रहे अनुभागों के समान होने में कोई विरोध नहीं आता। ये तो आसान एक्सप्लेनेशन है। शंका, संसार अवस्था में इन दोनों प्रकृतियों का अनुभाग समान होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, केवल ज्ञानावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय और वीर्यांतराय, ये चारों ही प्रकृतियां तुल्य है, इस 64 पद वाले महादंडक सूत्र से जाना जाता है। ये 64 पदों के द्वारा कौन किससे अधिक है, कम है, कौन समान है, उसकी बात बताते हैं, तो उसमें ये बात पता चल जाती है। किस किस को लिया? केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, असाता वेदनीय और वीर्यांतराय। शंका, यह सब तो बन जाता है, किंतु अंतराय के जघन्य घ करना, अंतराय के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जघन्य अनुभाग अनंत गुणा होता है या नहीं बनता? इसी जो महादंडक का उन्होंने दिया ना, वहां कौन कौन से लिए? केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण, असाता वेदिनी और वीर्यांतराय, वो चारों के अनुभाग समान बताए थे, ये चारों प्रकृतियां तुल्य होती है ऐसा कहा था। तो जघन्य में क्यों इन अनंत गुणा का डिफरेंस हुआ? सवाल ख्याल में आया? यह नहीं बनता क्योंकि ये तीनों कर्म कि ये तीनों ने केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण और वीर्यांतराय, तीनों कर्म संसार अवस्था में अनुभाग की अपेक्षा समान है, तथा अनुभाग कांडक घात व अनुसमयापवर्तना घात की अपेक्षा घ करना भी समान है। अतः उनके विसदृश होने में विरोध आता है। फिर से क्या कहना, उन्होंने क्या कहा था? संसार अवस्था में भी केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण और अंतराय, उसके साथ असाता को भी लिया है, परंतु यहां प्रश्न तीनों संबंधी चल रहा है, इसलिए तीनों की चर्चा चल रही है। तो उनका अनुभाग समान था, जब श्रेणी चढ़ता है तो क्या है, उस अनुभाग कांडक घात होता है, वो भी समान हुआ, और अनुस अनुभाग समान था ना, और अनुभाग कांडक भी समान हो गए, अनुभाग कांडक घात और अनुसमयापवर्तन भी समान हुआ, तो उसमें अनंत गुणा का अनुभाग क्यों रह जाता? ये बात वहां बता पूछ रहे हैं, यानी वो समान होना चाहिए था, शंका करके शंका है। समाधान, यदि वीर्यांतराय कर्म सर्वघाती रूप से केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण के समान होता तो इन तीनों में समानता अनिवार्य थी, इसका अर्थ क्या है? ये सर्वघाती कर्म है। कौन से? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण, ये सर्वघाती कर्म है। और वीर्यांतराय देशघाती, क्योंकि हमने देखा था ना, केवल ज्ञानावरण में कभी क्षोभशम नहीं होता है। केवल ज्ञानावरण क्या होता है? हमेशा सर्वघाती होता है, उसका उदय है। तो यह उदय का अज्ञान वगैरह वो चलेगा, औदयिक भाव में निमित्त है। और बाकी अन्य ज्ञानावरण जो है वो देशघाती है। परंतु वीर्यांतराय सभी पांचों लेना अंतराय, पांचों ही जो अंतराय है वो देशघाती प्रकृतियां हैं, और उसका हमेशा वो क्षोभशम ही होता है, ना उसका उपशम होगा और ना ही उसमें कभी सर्वघाती का उदय हो, क्षोभशम रूप से ही पाया जाएगा। तो क्या कहते हैं? वीर्यांतराय कर्म सर्वघाती नहीं है, ये बात बताई पहले में पहले। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वीर्यांतराय का सर्वत्र क्षोभशम पाया जाता है। अब यहां इन्होंने लिखा नहीं है, मगर क्षोभशम किस में हो सकता है? देशघाती प्रकृतियों में। प्रकृति कहा मैंने, क्योंकि देशघाती प्रकृतियों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय अभाविक है, और उन्हीं स्पर्धकों का भविष्य काल में सदवस्था रूप उपशम और देशघाती रूप से उदय। तो वीर्यांतराय का अभी तक हमेशा क्षोभशम ही पाया जाता था। अतएव चूंकि वीर्यांतराय कम देशघाती लक्षण वाला है, कम देश लगती कर्म चाहिए, वही मैं देख रही थी, कम देशघाती क्या है? सदो जैन वीर्यांतराय देशघाती लक्षणम तेन, कर्म करो उसको। वीर्यांतराय कर्म चूंकि यानी क्योंकि वीर्यांतराय कर्म देशघाती लक्षण वाला है, इस कारण वह एरंड दंड के समान निस्सार होने से बहुत घाता जाता है। ये पहले से देशघाती है और वो सर्वघाती है। तो देशघाती सर्वघाती भी हम देखते ना, चार चार प्रकार के वो उसमें शैल वगैरह वो होते हैं सर्वघाती में, शैल अस्थि और दारू। और देशघाती प्रकृतियों में सभी होते हैं, उसमें तो चारों होते, प्रकृति में चार होते हैं, फिर भी उनका घात होना सुलभ है। क्या कहते देखो, इस कारण वे एरंड दंड के समान, एरंड का जो पेड़ होता है अभी उसका, हाँ एरंडिया, तो नरम होते हैं ना उसके, ऐसे झुक जाए वो नरम होते हैं, तो उसके समान निस्सार होने से, कड़क नहीं है वो अन्य वृक्षों के समान, बहुत घाता जाता है। परंतु केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण सर्वघाती है। ये सर्वघाती कितना भी घात करेंगे तो सर्वघाती ही रहेंगे ना वो तो क्या सर्वघाती से देशघाती नहीं होने वाले? तो कितना भी घात करेंगे तो भी वो वज्र, और यहां लिखा है देखो, वज्र शैल के समान निविड़ रूप से बंध को प्राप्त होने के कारण बहुत नहीं घाते जाते, वो उनका अनुभाग अत्यंत तीव्र है, मैक्सिमम है। तो कितना भी घातेंगे तो भी वो उसमें बहुत ज्यादा नहीं घात होता उसका। इसलिए समझ में है ना, ये देशघाती है पहले से, वो नरम टाइप के है, ऐसा करो, ये एरंड के समान है, वो नरम है तो उसको बहुत घाता जाता है। और ये जो सर्वघाती है वज्र शैल के समान निबिड़ रूप से है बंध को प्राप्त, इसलिए ज्यादा घात नहीं होता। इसलिए अंतराय कर्म के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा ज्ञानावरण और दर्शनावरण के जघन्य अनुभाग का अनंत गुणा होना उचित ही है। ये समझ में है ना? ये कितने हमने तीन देखे क्या, अल्पभूत ज्ञानावरण दर्शनावरण, हाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण में तीसरा। अब उसके आगे पढ़ेंगे। आऊ वेयना भावदो जहन्निया अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा आयु कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। ये हमने किसके देखी थी आयु कर्म की जघन्य वेदना? ये मनुष्य तीर्यंच जो अपर्याप्त की आयु बांधते हैं, अपर्याप्त तीर्यंच की, उसको देखा था। देखो, मनुष्य अथवा पंचेंद्रिय तीर्यंच योनि वाले जीव के द्वारा परिवर्तमान मध्यम परिणामों से बांधी गई अपर्याप्त तीर्यंच संबंधी आयु मिला आपको? 34 पृष्ठ पर चल रहा है 44 सूत्र। अनुभाग की अपेक्षा जघन्य होती है, ये तो पहले भी बताया था। यह उपर्युक्त दोनों कर्मों के जघन्य अनुभाग से अनंत गुणी है। कौन से दोनों कर्म देखे? ज्ञान आवरण दर्शन आवरण, उससे यह अनंत गुणा है, अनुभाग ज्यादा है। क्योंकि जिस प्रकार क्षपक श्रेणी में ज्ञानावरण और दर्शनावरण का अनुभाग कांडक घात व अनुसमयापवर्तना घात के द्वारा घात को प्राप्त होता है, उस प्रकार उनके द्वारा आयु कर्म का अनुभाग घात को नहीं प्राप्त होता है। यानी ये कौन से जीव लिए थे? क्षपक श्रेणी वाले, तो वहां तो अनुभाग कांडक घात होते चला जाता है और अनुसमयापवर्तना घात भी होता है, तो कर्मों का अनुभाग घटता है। आयु कर्म में कोई अनुभाग घटना बिटना की बात होती ही नहीं कभी, अभी यानी कभी भी नहीं होती। नहीं, वो अपवर्तनाघात होता है उसकी बात नहीं है यहां पर, परंतु जैसे क्षपक श्रेणी में होता है वैसा उसका घात नहीं होता। हाँ, स्थिति की बात नहीं है, अनुभाग, अनुभाग की बात है यहां पर। अब जो आयु की बात है उससे भी आगे का अल्पभूत कहेंगे। गोद वेयणा भाव दो जहनिया अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा, बार बार भाव की अपेक्षा डाला है हर एक सूत्र में उन्होंने, क्योंकि हम भूलते हैं ना इसलिए। गोत्र कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। जो ये पहले बता चुका है फिर भी यहाँ किसको होती है वो भी यहाँ याद कराते हैं। जो सर्व विशुद्ध है, हतसमुत्पत्तिक कर्मा है, और जिन्होंने उच्च गोत्र का अपवर्तनाघात किया है यानी उद्वेलना की है, ऐसे बादर तेज कायिक व वायु कायिक पर्याप्त जीव में गोत्र कर्म का अनुभाग जघन्य होता है। पहले तो ये कंडीशन उन्होंने बता दिए थे अलग से। यहां यद्यपि संख्यात हजार अनुभाग कांडक घात हुए है तो भी गोत्र कर्म का घात करने के बाद शेष रहा अनुभाग आयु के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा है। यानी यहां जो संख्यात हजार भाग अनुभाग कांडक घात होते हैं एक इंद्रियों में, यतः क्योंकि चतुष्षष्ठी पदिक यानी 64, चतुष्षष्ठी यानी 64 दंडक में, दंडक यानी अभी वो तो 64 पद बताएंगे उसको दंडक कहा है, कोई रूल्स नियम ऐसे बताते हैं। सर्वोत्कृष्ट तिर्यक आयु के अनुभाग से सर्वोत्कृष्ट नीच गोत्र का अनुभाग अनंत गुणा है ऐसा कहा गया है। और यहां जघन्य पर घटा रहे हम, अतः इससे जाना जाता है कि आयु के जघन्य अनुभाग बंध की अपेक्षा नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंध अनंत गुणा है। उससे नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग अनंत गुणा है क्योंकि वह द्विस्थान सत्कर्म रूप है। द्विस्थान यानी नीचे के दो स्थान लेना ना उसके, नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग अनंत गुणा है वह द्विस्थान सत्कर्म रूप है। नीच गोत्र अभी वो अघाते में कौन से लेना, अप्रशस्त कर्मों में अनुभाग के नाम क्या है? नीम और कांजीर। नाम वेयना भाव दो जहनी अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा नाम कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। ये छठा पॉइंट आ गया। हाँ, 40 सूत्र 41 से शुरू किया था हमने। हत समुत्पत्ति क चाहिए ना, हत समुत्पत्ति क, हत समुत्पत्ति कर्म और परिवर्तमान मध्यम परिणामों से संयुक्त जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त जीव स्त हुआ है, उसके नाम कर्म का अनुभाग जघन्य होता है। यह अनुभाग नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणा होता है, क्योंकि सर्वत्र नीच गोत्र के अनुभाग से अनंत गुणा जो यश कीर्ति आदि शुभ प्रकृतियों का अनुभाग होता है, उसका विशुद्धि के द्वारा घात नहीं होता, अति संक्लेश को प्राप्त कराकर। स के ऊपर बिंदी, क्या कहते हैं, अति संक्लेश को प्राप्त कराकर शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घात करने पर भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि संक्लेश से अयश कीर्ति आदि अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि देखी जाती है। हमें तो कम से कम अनुभाग चाहिए जिस किसी कर्म में होगा उसका। इसीलिए जो परिवर्तमान मध्यम परिणाम शुभाशुभ प्रकृतियों के अनुभाग की महान वृद्धि व हानि में निमित्त नहीं पड़ते, यानी उसमें ज्यादा वृद्धि हानि नहीं होती, मध्यम टाइप के ना, उनसे परिणत हुए जीव को उसका स्वामी बतलाया गया है। अतएव बहुत वृद्धि व हानि का अभाव होने से नाम कर्म की वेदना भावतः गोत्र कर्म की अपेक्षा अनंत गुणी होती है, यह सिद्ध होता है। अब वेदनीय वेदना भावदो जहन्या अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा वेदनीय कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। शंका, यतः वेदनीय कर्म का हमने किसको देखी थी, वेदनीय कर्म की जघन्य वेदना याद है? हाँ, अयोग केवली के अंतिम समय में, कौन सा उदय वाला असाता वेदने का, क्योंकि साता में तो ज्यादा होता है ना अनुभाग, असाता का उदय वाला लिया था। यतः वेदनीय कर्म का अनुभाग क्षपक श्रेणी में संख्यात हजार अनुभाग कांडक घातों के द्वारा घात को प्राप्त हो चुका है, इसलिए जो चिरंतन अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणाहीन होता हुआ, ये चिरंतन अनुभाग यानी मुझे भी ख्याल में, पहले हम देखते ना पूर्व स्पर्धक वगैरह, मिनिमम पॉसिबल जो संसार अवस्था में अनुभाग होता है उससे भी श्रेणी में वगैरह उसका अनुभाग बहुत घटता है, तो चिरंतन अनुभाग की अपेक्षा चिरंतन यानी कायम, कायम यानी संसार अवस्था में हमने देखा था पूर्व स्पर्धक कहे जाते हैं, अपूर्व स्पर्धकों की रचना तो बाद में श्रेणी में होती है जिसका अनुभाग घटता चला जाता है, या वहां अपूर्व स्पर्धक भी नहीं कहेंगे, मगर वो चिरंतन अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणाहीन होता चला जाता है अनुभाग। ऐसे होते हुए क्या हुआ, अयोग केवली के अंतिम समय में एक निषेक का अवलंबन लेकर स्थित है वह भला जो क्षपक श्रेणी में घात को नहीं प्राप्त हुआ है और जो संसारी जीवों के कांडक घातों के द्वारा अपने उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणहीन है, ऐसे नाम कर्म के जघन्य अनुभाग से अनंत गुणा कैसे हो सकता है, ये शंका चल रही है। क्या शंका करने पूछा है, वेदनीय कर्म की बात चल रही है, तो वेदनीय कर्म का अनुभाग भी अनुभाग कांडकों के घात द्वारा घातते हुए वो ऊपर चढ़ा है ना। तो ये नाम कर्म के जघन्य अनुभाग से वो अनंत गुणा क्यों है? क्योंकि नाम कर्म भी वहां पर है 14वें में, परंतु वहां तो वहां जो नाम कर्म है वो शुभ नाम कर्म है ना, यहाँ तो ये अशुभ वाला अनंत गुणाहीन वाला यहाँ पर लिया है। और नाम कर्म का जघन्य किसको होता है? ये सूक्ष्म निगोद वाला दिया था, क्योंकि अयोग केवली में जो नाम कर्म है वो तो यश कीर्ति वगैरह जो है उसका तो अनुभाग और उत्कृष्ट कोटि का होगा, उसको नहीं लिया है वहां पर। यहाँ प्रश्न क्या है कि आपने जो असाता वेदनीय की 14वें गुणस्थान के अंत समय में बात की जघन्य वाली, तो वो अनंत गुणा कैसे होगा नाम के अपेक्षा से, क्योंकि वो भी कितना घटाया है उसने। हाँ, दूसरे संसार अवस्था में यश कीर्ति का उत्कृष्ट अनुभाग असात संज्ञा वाले वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग से अनंत गुणा होता है, ऐसी अवस्था में यश कीर्ति नाम कर्म का हुआ और वेदनीय में असाता को लिया, असाता वेदनीय को लिया, तो संसार अवस्था में यश कीर्ति का उत्कृष्ट अनुभाग असाता संज्ञा वाले वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग से अनंत गुणा होता है। असाता वेदनीय से अभी यश कीर्ति का अनुभाग अनंत गुणा है संसार अवस्था में, ऐसी अवस्था में वह क्षपक श्रेणी में संसारी जीवों के कांडक घातों के द्वारा घात को प्राप्त हुए असाता वेदनीय के अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणाहीन कैसे किया जा सकता है? ये पूरी इतनी शंका है लंबी चौड़ी, ये क्यों अनंत गुणा बताया उसकी बात पूछ रहे हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि केवल अकषाय परिणाम ही अनुभाग घात का कारण नहीं है, किंतु प्रकृतिगत शक्ति की अपेक्षा रखने वाला परिणाम अनुभाग घात का कारण है। ये प्रकृतिगत शक्ति भी है ना, वो किसका घात ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये प्रकृतिगत शक्ति की अपेक्षा निर्भर है। उसमें भी अंतरंग कारण प्रधान है, हम केवल बाहर की विशुद्धि देख रहे हैं तो अंतरंग कारण प्रधान है, वो प्रकृति की अपनी शक्ति है। उसके उत्कृष्ट होने पर बहिरंग कारण के स्तोक रहने पर भी अनुभाग घात बहुत देखा जाता है, तथा अंतरंग कारण के स्तोक होने पर बहिरंग कारण के बहुत होते हुए भी अनुभाग घात बहुत नहीं उपलब्ध होता। यतः नाम कर्म संबंधी अनुभाग के घात के अंतरंग कारण की अपेक्षा, यानी नाम कर्म का अनुभाग जितना घात होता है उसकी अपेक्षा वेदनीय संबंधी अनुभाग के घात का अंतरंग कारण अनंत गुणाहीन है, अतः नाम कर्म के जघन्य अनुभाग की अपेक्षा वेदनीय के जघन्य अनुभाग का अनंत गुणा होना उचित ही है। यानी जितना अनुभाग नाम कर्म का होता है उससे अनंत गुणा हीन घात, घात कम हो रहा है तो रिमेनिंग अनुभाग ज्यादा है। नाम कर्म में घात ज्यादा हो रहा था, इसका घात कम हो रहा है, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या है? हाँ, ये अनंत गुणा रह गया। इस प्रकार जघन्य अल्प बहुत्व समाप्त हुआ, ये सभी जघन्यों में अल्प बहुत्व बताया, अब उत्कृष्ट में बताएंगे। उक्कस्य पदेन सवत्थो वा आवो वेयणा भावदो उक्कस्य, उत्कृष्ट पद का अवलंबन लेकर भाव की अपेक्षा आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना सबसे स्तोक है, क्योंकि वह भवधारण मात्र कार्य को करने वाली है। उसका कार्य क्या है? अनुभाग का फल देना क्या है? भवधारण करना। अब आगे नानावर्णीय दंशनावर्णीय अंतराय वेयणा भावदो उक्कस्याणु तिन्निवी तुल्लाओ अनंत गुणाओ, भाव की अपेक्षा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और अंतराय की उत्कृष्ट वेदनाएं तीनों ही तुल्य होकर आयु कर्म की उत्कृष्ट वेदना से अनंत गुणी है। ये दो पॉइंट। हाँ, दूसरा अल्पबहुत्व, उत्कृष्ट पद में अभी अल्पबहुत्व चलेगा। पहले जघन्य पद में हमने लगा लिए, जघन्य पद में सात हुए ना, हाँ 41 से शुरू हुए थे, अब यहाँ दो हो गए, ज्ञानावरण आदि को दूसरा नंबर दिया। अब शंका, यतः केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों ही समान है, अतः केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के अनुभाग में भी समानता रही आवे, किंतु अंतराय के अनुभाग को इनके समान मानना उचित नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत वीर्य में समानता नहीं है। यह शंकाकार की शंका है, तीनों को एक साथ क्यों लिया। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत वीर्य में समानता स्वीकार की गई है। शंका, उन तीनों में समानता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है। वह इसी सूत्र से जाना जाता है, और आवारक शक्ति के समान होने पर, आवारक यानी आवरण करने वाले, वो आवारक, आवारक शक्ति के समान होने पर उनके द्वारा आवरण करने योग्य गुणों में असमानता मानना उचित नहीं है, क्योंकि वैसा ये उत्कृष्ट देश गाती है, फिर भी उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा बात कर रहे। जगन्य में डिफरेंस पड़ा था, नहीं नहीं नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग की बात चल रही है, अनुभाग उत्कृष्ट होने की बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, ये उत्कृष्ट आया, इसलिए तीनों का वो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है और अनंत वीर्य है, तीनों की समानता ली यहाँ पर। ये आवरण को नहीं लिया, यहाँ जीव के गुणों को ही समान लिया है। हाँ, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम ले लिया। क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है, यानी ये तीन गुण समान है, केवल ज्ञान केवल दर्शन और अनंत वीर्य, तीनों की समानता है, तो तीनों में जो मैक्सिमम जो बाधा डालने वाले की जो शक्ति है वो भी समान ही होगी। ये बात यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग की बात चल रही है। शंका, तो फिर आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा उनका अनुभाग अनंत गुणा है, यह कैसे संभव है। समाधान, नहीं, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग कारणों से प्रतिबद्ध उनके अनंत कार्य उपलब्ध होते हैं, इससे ज्ञात होता है कि आयु के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा उनका अनुभाग अनंत गुणा है। फिर आगे मोहिनी की बात करें, मोहनीय वेणा भावदो उक्कस्य अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा मोहनीय के, अभी ये तीन नंबर पर आ गया, उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है, कारण के ऐसा स्वभाव है और स्वभाव युक्ति का विषय नहीं होता। ये प्रश्न पहले के पूछने के पहले ही बता दिया क्योंकि अग्नि दाहजनक होकर भी मृत्युदायक है इत्यादि में कोई युक्ति नहीं पाई जाती इतने में लपेट लिया। चलो, नामा गोदवेयनाओ भावदो उक्कसियाओ दोवी तुल्लाओ अनंत गुणाओ, उनसे भाव की अपेक्षा नाम वो गोत्र की उत्कृष्ट वेदनाएं दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी हैं। चार नंबर हो गए ना, अल्पबहुत्व के चार नंबर होंगे, क्योंकि वे दोनों शुभ प्रकृति हैं। अब शंकाकार पूछता है, अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा क्यों है। समाधान, नहीं, क्योंकि वैसा स्वभाव है और स्वभाव प्रश्न के विषय नहीं हुआ करते। अब लास्ट में वेदनीय वेयना भावदो उक्कस्य अनंत गुणा, पहले चार हुए थे ना, देखो जगन्य में तो सात हुए थे, वहां ज्ञानावरण दर्शनावरण को ही एक साथ लिया था, बाकी सबको सेपरेट लिया था। यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण वीर्य अंतराय सबको एक साथ लिया, अंतराय को भी लिया, नाम गोत्र को भी एक साथ लिया, इसलिए यहाँ पांच हुए अल्पबोध। देखो उनसे भाव की अपेक्षा वेदनी की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है, कारण कि यश कीर्ति और उच्च गोत्र की अपेक्षा साता वेदनी अतिशय प्रसिद्ध प्रशस्त है। ये प्रशस्त में भी तरतमता बताई उन्होंने, अधिक प्रशस्त है। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग अल्पभूतव समाप्त हुआ। अब जो हम जगन्य और उत्कृष्ट देखा है उसको एक साथ लगा के बताएंगे। 53 नंबर सूत्र, जहन्नुक्कस्य पदेन सवत्थोवा मोहनीय वेयना भावदो जहन्निया। जगन्य उत्कृष्ट पद से भाव की अपेक्षा मोहनीय की जगन्य वेदना सबसे स्तोक है। एक नंबर पर यह सूत्र सुगम है, ये पहले भी हमने जगन्य में लिया था, अभी दोनों को एक साथ है तो कहीं कहीं जो देखेंगे कहां डिफरेंस है। अंतराय वेयना भावदो जहन्निया अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा अंतराय की जगन्य वेदना अनंत गुणी है। नानावर्णीय दंशनावर्णीय वेयनाओ जहन्नियाओ दोवी तुल्लाओ अनंत गुणाओ। क्या भावादो नहीं भावदो जहन्निय, हाँ पढ़ना रह गया था क्या, ये भावदो जहन्य, उससे भाव की अपेक्षा ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय की जघन्य वेदनाएं दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी हैं। यह सूत्र सुगम है। 56 नंबर, आउ अवेयना भावदो जहन्निया अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा आयु की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। नाम वेयना भावदो जहन्निय अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा नाम कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। गोद वेयना भावदो जहन्निय अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा गोत्र कर्म की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। वेयनीय वेदना भावदो जहन्निय अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा वेदनी की जघन्य वेदना अनंत गुणी है। ये तो सात जो जघन्य में हमने देखे थे वैसे यहां पर आ गए। अब 60 नंबर, आहु अवेयना भावदो उक्कस्य अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा आयु की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है। या उत्कृष्टों में जो हमने जघन्य पर लिया था ना उसका भी नंबर आ गया। अब क्रम से तो वही हो गए, नानावर्णीय दंशनावर्णीय अंतराय वेयना भावदो उक्कस्य तिन्निवी तुल्लाओ अनंत गुणा, उससे भाव की अपेक्षा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय की उत्कृष्ट वेदनाएं तीनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। मोहनीय वेयना भावदो उक्कस्य अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा मोहनीय की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी है। यह सूत्र सुगम है। नामा गोद वेयनाओ भावदो उक्कस्याओ दोवी तुल्लाओ अनंत गुणाओ, उससे भाव की अपेक्षा नाम व गोत्र की उत्कृष्ट वेदनाएं दोनों ही तुल्य होकर अनंत गुणी हैं। यह सूत्र सुगम है। वेयनीय वेयना भावदो उक्कस्य अनंत गुणा, उनसे भाव की अपेक्षा वेदनी की उत्कृष्ट वेदना अनंत गुणी हैं। जैसे हमने पहले 7 और फिर 5 देखे थे, वैसे यहाँ भी 12 हो गए। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार जघन्य उत्कृष्ट अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। मूल प्रकृतियों का समाप्त हुआ। अभी उत्तर प्रकृतियों में कहेंगे हैं। अब मूल प्रकृतियों के आश्रय से जघन्य उत्कृष्ट अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करके उत्तर प्रकृतियों के आश्रय से अनुभाग के अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। अभी हमने तो सभी मूल प्रकृतियां देखी, उसमें तो ये वहां 7 और यहाँ 5 अल्प बहुत्व हो गए। अभी हर एक के वो अलग अलग 5 ज्ञान आवरण है, 9 दर्शन आवरण है, उनमें सब में लगाए। नाम कर्म में तो कितनी सारी है, अभी लगाएंगे, सभी में लगाएंगे। नाम कर्म की प्रकृति याद है, 93 है ना, 93 है। अब उसको 93 को याद है आपको, नहीं है? अच्छा, वो 42 तो याद है पद, उसके पिंड पद, पिंड प्रकृति है ना। देखो पिंड किसको, जैसे ग्रुप है, जैसे 4 गति के बदले 1 गति नाम कर्म बता दो। तो गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, सहनन, संस्थान, अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी और विहाय गति, ये 14 है, वो पिंड प्रकृतियां हैं। हाँ, फिर अग्र, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हुआ क्या? पहले वो त्रस, बादर वगैरह अभी ले लेने से, त्रस, बादर, फिर त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यशकीर्ति अशकीर्ति, तीर्थंकर और निर्माण, ये 42 हो गए पिंड प्रकृतियां। उसको विभाजित करो तो नाम कर्म की अलग अलग हो जाएगी, जैसे गति में 4, जाति में 5, इस तरह से 14 पिंड प्रकृतियां हैं, और बाकी पिंड नहीं, सेपरेट है, अलग अलग है, उसमें जोड़ी जोड़ी बहुत है। त्रस स्थावर वगैरह वो 4 जोड़ी, और स्थिर असुर वो 6 जोड़ी होती है। हाँ, 10 जोड़ियां हैं, जोड़ियां 10 है। ऐसे याद करने का तरीका है ये, दूसरा कुछ नहीं। तो ये होने का नहीं अभी, क्यों पढ़ना, एक सूत्र पढ़ेंगे, चलो श्लोक टाइप है ये, देखो ये खाली शॉर्ट फॉर्म लिए यहाँ पर और श्लोक बना दिए इतने प्रकृतियों के लिए। सादम जसु सतेकम ते आवे मणु अनंत गुणहीना, ओम इच्छके असादम वीर्य अनंताणु संजलना। देखो साता वेदनीय, जसु उच्च, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, ये 2 प्रकृतियां, देवगति, हाँ उससे ही है, साधम याने साता, जस याने यश कीर्ति, उच्च याने उच्च गोत्र, ये 2 प्रकृतियां, दे याने देवगति, कम याने कार्मण शरीर, ते याने तेजस शरीर, आ याने आहारक शरीर, वे याने वैकिरेक शरीर, मनु याने मनुष्य गति, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणीहीन है। ओ याने औदारिक शरीर, मिच्छ याने मिथ्यात्व, के याने केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण दोनों लिया, असाधम याने असाता वेदनीय, वीर याने वीर्यांतराय, ये 4 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी चतुष्टय और संज्वलन चतुष्टय, ये प्रकृतियां उत्तरोत्तर अनंत गुणीहीन है। देखो उन्होंने 2 लाइन में कितना शॉर्ट में बता दिया, ऊपर अनंत गुणाहीन, ये भी अनंत गुणाहीन। इसका स्पष्टीकरण हम कल करेंगे। हाँ, अनुभाग, अभी सभी जगह अनुभाग ही लगाना है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। विनोद भाई।